समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो करिश्मा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट करिश्मा। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Relief and rescue operations continue on war footing after landslide en route to Vaishno Devi Shrine in Katra. Prime Minister Narendra Modi expresses grief over loss of lives.
Jammu Kashmir, Punjab and Himachal Pradesh mein barish aur baad ka prakop jari.
Defence Minister Rajnath Singh says world respects India not only for his strength but also for his dedication to truth, peace and justice.
Gṛh Mantri Amit Shah ne kaha Operation Sindoor aur Operation Mahadev ne aatanki sarganaon ko unke krityon ke parinamon ke bare mein spasht sandesh diya.
New Delhi says killing of journalists in Khan Yunis, Gaza is shocking and deeply regrettable.
Ganesh Chaturthi ka utsav paramparik utsah ke saath shuru.
And former Indian spinner Ravichandran Ashwin announces retirement from Indian Premier League. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Lake Day. Today we are marking World Lake Day, and that's right, today we shine a spotlight on one of the planet's most essential yet often overlooked resources, lakes. Lakes, they may look calm and serene, but they are hard at work every single day. They provide fresh water for nearly every aspect of life, drinking, irrigation, sanitation, food production, even industry. Whether it's a remote alpine lake or a massive inland sea, these bodies of water are central to the health of a planet and a people.
तो जी हाँ, आज हम मना रहे हैं विश्व झील दिवस। झीलें देखने में भले ही शांत और स्थिर लगती हों, लेकिन वे हर दिन हमारे जीवन के लिए काम करती हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। झीलें जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये मछलियों, पक्षियों, उभयचरों, कीड़ों और हजारों वनस्पतियों प्रजातियों के लिए खर हैं। दरअसल कुछ प्रजातियां केवल विशिष्ट झीलों में ही पाई जाती हैं और जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका को भी ना भूलें। झीलें आसपास के इलाकों को ठंडा रखने, कार्बन जमा करने, बाढ़ के पानी को सोखने और यहाँ तक कि स्थानीय मौसम को नियंत्रित करने में भी मदद करती हैं। गर्म होती दुनिया में यह पहले से ही कहीं ज्यादा मूल्यवान है।
Yes, but Karishma, lakes are under threat. Right now, they are facing a crisis driven by human actions and a rapidly changing climate. From the overuse of water to increasing pollution, from toxic runoff to rising temperatures, the pressure on lakes is mounting. You might be shocked to learn that pollution from fertilizers, plastic waste and industrial chemicals is regularly flowing into our lakes, either directly or through rivers.
और इतना ही नहीं, इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ हम बर्फ की परत में कमी देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि ज्यादा वाष्पीकरण और कुछ क्षेत्रों में जलस्तर में कमी, अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे प्रदूषक और भी तेजी से झीलों में जा रहे हैं।
Yes, and the data is alarming. 85% of freshwater species have vanished in the just past 50 years. Pollution levels in lakes could be more than double by 2050, and the ecosystem value of lakes could drop by 20% in the same time frame. And all of this leads to not only environmental collapse, but economic loss, food insecurity, and health risks for communities worldwide.
तो आइए इसके पैमाने को समझने के लिए थोड़ा समय निकालें। हमारे ग्रह पर 117 मिलियन से ज्यादा झीलें हैं। ये पृथ्वी की लगभग 4% भूमि को कवर करती हैं, जहां ग्लेशियर और जलभृत हमारे अधिकांश मीठे पानी को धारण करते हैं। वहीं झीलों में आसानी से उपलब्ध सतही मीठे पानी का लगभग 90% हिस्सा मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि झीलें अरबों लोगों के लिए पानी की उपलब्धता की अग्रणी पंक्ति हैं।
But here's the silver lining. We are not helpless. Around the world, scientists, environmentalists and citizens are taking incredible steps to protect our lakes.
संयुक्त राष्ट्र का एक डेटा प्लेटफॉर्म फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एक्सप्लोरर एक बड़ा बदलाव लाने वाला उपकरण है। यह उपकरण हमें दुनिया की नदियों, आर्द्रभूमि और झीलों का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है। प्रदूषण और सूखे तथा यहां तक कि आर्द्रभूमि और झीलों को लेकर जो सुधार के संकेत हैं, उस पर भी इसके जरिए नजर रखी जा सकती है। इस तकनीक का बुद्धिमानी से उपयोग करने पर हम प्राकृतिक दुनिया की रक्षा कर सकते हैं।
Yes, now Karishma, imagine a calm lake at dawn, mist rising, birds soaring, lotuses blooming. Now imagine that lake disappearing, swallowed by garbage, sewage and neglect. Scary, isn't it? But here's the twist. India is fighting back. Yes. You heard it right. From Kashmir to Kanyakumari, from Udaipur's shimmering waters to the Loktak Lake of Manipur, India is waking up to lake conservation. So what's been done? Let's dive right in, Karishma.
भारत सरकार ने जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना NPCA शुरू की है, जिसमें पिछले झील और आर्द्रभूमि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य यही है कि जल की गुणवत्ता, जैव विविधता और सामुदायिक संपर्कों को बहाल करना।
Also under the Smart Cities Mission, urban lakes are getting smart solutions. Think sensor-based water monitoring, artificial wetlands and community parks. Take Bhopal's Upper Lake, it's now a model of sustainable urban water management. In Bengaluru, the city of lakes once gasping for breath, citizen groups like MAPSAS and United Way are reviving lakes like Kaikondra Halli and Putana Halli and turning them into a biodiversity hubs.
और क्या आप जानते हैं कि जल शक्ति अभियान सिर्फ नदियों तक ही सीमित नहीं है। यह वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन के जरिए झीलों के पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है। भारत के इंजीनियर और पर्यावरणविद तैरती हुई आर्द्रभूमि, वायु संचार वाले फवारे और यहां तक कि प्राचीन तालाब प्रणालियों का उपयोग करके नवाचार को पारंपरिक ज्ञान के साथ मिला रहे हैं।
Also in Tamil Nadu, restoration of temple tanks has helped groundwater recharge and improved lake connectivity. And you might be wondering, what difference can I make? And the answer is a lot. Here are some ways you can help protect lakes starting today.
प्लास्टिक और रासायनिक कचरे का उपयोग कम करें, प्रदूषकों को पानी से दूर रखें। इसके साथ ही स्थानीय झीलों और नदियों की सफाई में सहयोग करें या स्वयं सेवा करें। घर पर जल संरक्षण के बारे में जानें, क्योंकि पानी की हर बूंद मायने रखती है। आवाज उठाएं, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने वाली नीतियों और नेताओं का भी समर्थन करें। इसके साथ ही दूसरों को शिक्षित करें, खासकर बच्चों को। आज की जागरूकता कल के कार्यों को आकार देती है।
And now, Karishma, imagine a child walking beside a lake that's clean, thriving with wildlife, full of wonder. That's the future we want, and is possible, but only if we act now. Lakes are life. They have been shaping civilizations for thousands of years, feeding us, calming us, connecting us. Let's not wait for them to vanish before we recognize their worth.
तो श्रोताओं, इस विश्व झील दिवस पर अपने आसपास की झीलों की कद्र करने के लिए कुछ पल निकालें और फिर उन्हें बचाने के लिए कदम भी उठाएं, क्योंकि जब हम झीलों को बचाते हैं तो हम जिंदगियां भी बचाते हैं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
The festival of Ganesh Chaturthi has been celebrated across the country with great devotion, and the day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayak Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. And in Puducherry, Darshan started at the famous Manakulla Vinayagar temple with special Abhishekam, at 4 this morning. And President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have wished the people on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi. Our correspondent has filed this report.
A large number of devotees have gathered for the darshan at the Tekri Ganesh Temple. Public Ganesh mandals across the city have installed beautifully decorated idols of Lord Ganesh. These idols are being taken through the main squares of the city with great fanfare. To make this Ganesh festival both eco-friendly and joyful, the municipal corporation and the district administration are promoting several initiatives, such as encouraging the use of eco-friendly idols, producing compost from waste collected during immersions. Markets are witnessing heavy crowd as people purchase idols and festive essentials. A unique glimpse of Maharashtra's rich cultural splendor can be experienced during this 10-day festival, which has started today. With report from Akashwani Nagpur, Aishwarya Rai Nigam, Delhi.
पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को खेल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस सिलसिले में खेल एवं युवा मामले विभाग द्वीपों में विभिन्न खेल गतिविधियों की योजना कर रही है। एक रिपोर्ट।
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने लोगों से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक घंटा फिटनेस और खेल को समर्पित करने का आह्वान किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि फिट इंडिया मिशन और भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र इस वर्ष समारोह का नेतृत्व करेंगे। ये दोनों संगठन 29 से 31 अगस्त तक देश भर में 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस अभियान एक घंटा खेल के मैदान में विषय के अंतर्गत खेल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी खेल दिवस मनाए जाने के सिलसिले में कई खेल गतिविधियों के आयोजन किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने 3 मशाले 3 जिले 3 ओलंपिक मूल्य के साथ फिट इंडिया अंडमान निकोबार खेल महोत्सव का आधिकारिक शुभारंभ किया। प्रत्येक मशाल 3 जिलों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिष्ठित एथलीट को सौंपी गई है। मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिले में मशाल रिले भी निकालकर लोगों को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्य सचिव चंद्रभूषण कुमार ने कहा कि फिट इंडिया अंडमान निकोबार खेल महोत्सव अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खेल संस्कृति का जश्न मनाने का एक अवसर है और यह महोत्सव 31 अगस्त तक चलेगा। महोत्सव के दौरान अंतर विद्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। परिक्रमा के लिए श्री विजयपुरम से संपादक अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद।
एंड बाय ऑगस्ट दीवार आइलैंड गोवा फील्स लाइक अ पेंटिंग कम टू लाइफ। वी हैव अ रिपोर्ट।
By August, Diva Island feels like a painting come to life. The fields are all golden with paddy, just waiting to be harvested. It's one of those places that calms you, makes you want to take a deep breath and just enjoy the view. But there is a twist to this picture-perfect place. This was once the site of some serious boundary disputes between villagers. They even had mock battles to figure out who owned what land. When things got messy, the Portuguese came up with an idea, colorful flags called bandeiras to mark the boundaries. That's how bandeira was born, and it's been a tradition ever since. The day kicks off with the flag parade, a nod to its old school beginnings, and then the procession moves along with the old boundary lines. Back in the day, the real action was in the photas, little pop guns, but they are gone now and the floats came in, making the festival more colorful, more exciting. Now it's not just a local thing, it draws people from all over the world. Goa's Tourism Minister Rohan Kaunte told Akashvani that
the Bandeira Festival on Diwar Island is not just a celebration, it is a living expression of Goa beyond beaches. It reminds us that our strength lies not only in sun and sand, but in the richness of our culture, heritage and community spirit. This is why we say with confidence, hashtag Goa beyond beaches. Festivals like Bandeira are not only spectacles for tourists alone, but they are also gateways into the real Goa. Why? Vibrant, rooted and regenerative, supporting Goa's vision of regenerative tourism.
The whole thing wraps up with a simple but meaningful tradition. The first corn of the season is cut and offered to gods. Bandeira is about the history, the culture and the people of Diwar Island. And if you ever get the chance to experience it, you will walk away with memories you won't forget. Nikhil Upadhyay, Akashvani News, Panji.
Kerala is gearing up for its biggest annual festival, Onam. The formal celebrations have started with Atham celebrations on Tuesday, and entire Kerala will be on a festive mood for the next 10 days. And the most important day is Thiru Onam, which falls on September 5th. This time, Kerala will be celebrating Onam festival in a different positive manner, and there are moves to celebrate Onam in an eco-friendly way. We have more from a Thiruvananthapuram correspondent, Sri Smithy M. Paluruthi.
Kerala is making a noble contribution to Swachh Bharat by strictly following green protocol during this year's Onam celebration. With the festivities beginning on Atham Day, cultural programs, trade fairs, feasts and public gatherings are happening across the state. Naturally, this leads to higher use of carry bags and disposable items. To tackle this, the state is strongly enforcing the ban on single-use plastic. The green protocol aims to minimize waste by promoting reusable and eco-friendly alternatives. For the traditional Ona Sadhya, the feast, steel glasses and reusable vessels are being encouraged instead of single-use plates and cups. The government has also issued strict instructions to avoid plastic for decorations. The tourism department's grand cultural procession at the state capital Thiruvananthapuram, marking the conclusion of the state-level Ona celebration, all departments participating with floats have been directed to comply. Meanwhile, panchayat and municipalities have been asked to monitor commercial establishments and ensure adequate weight bins and impose fine on violators. Let this Onam be truly green. Smithy M. Paluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
Yes, and former Indian spinner Ravichandran Ashwin has announced his retirement from the Indian Premier League. During his 14-year-long career, Ashwin represented several franchises including Chennai Super Kings, rising Pune Super Giant, Punjab Kings, Delhi Capitals and the Rajasthan Royals. Ashwin finishes as the fourth highest wicket taker in the Indian Premier League with 187 wickets from 221 matches.
वहीं अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में अमरीका की कोको गॉफ ने पहले दौर में अजला टॉम लजानोविक को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया. पुरुष सिंगल्स में अमरीका के टॉमी पॉल ने एल्मर मोलर को हराया, जबकि अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पहले दौर में एलेजांड्रो ताबिलो पर जीत हासिल की.
And moving on to some business news, Indian equity markets were closed for trading today on the occasion of Ganesh Chaturthi. Trading in the equity, equity derivatives, securities, lending and borrowing and the currency derivatives segments also remained shut. Meanwhile, the commodity market was closed during the morning session but will resume trading activities from 5 p.m. in the evening session.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
India's glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed.
The year was 1942. On 8th August, during the Bombay session of the Congress, Mahatma Gandhi decided to demand complete freedom and gave a call to the British government to quit India. The very next day, all the important leaders of Congress were arrested or went underground. There were mass protests throughout the country. Most spent years in prison and out of contact with the masses. And during this time, came into action the secret radio of the Congress. It was an underground radio station, which operated for about 3 months during the Quit India movement.
It was the broadcasting mouthpiece of the Indian National Congress and functioned from different locations from Bombay. This very important task was executed by Usha Mehta. The veteran freedom fighter accomplished the task with the help of ham radio operators. On 27 August 1942, the secret Congress radio went on air with Dr. Usha Mehta herself broadcasting this announcement. This is the Congress radio calling on 42.34 meters from somewhere in India.
I was connected with the underground Congress radio in Bombay. Of course, what we used to say was that this is Congress radio broadcasting from somewhere in India. But really, we were operating it from Bombay.
Usha Mehta's other associates for organizing the Congress radio included Vithal Das Khakar, Chandrakant Jhaveri, and Babubhai Thakkar. The technicians and the equipment were supplied by Nanak Motwani of Chicago Radio, Mumbai. Eminent personalities like Ram Manohar Lohia, Achyut Rao Patwardhan, and Purushottam Tikam Das were also associated with the Congress Radio.
Immediately the call was given by Mahatma Gandhi to do or die, we thought it would be better if we have a broadcasting station of our own, because a transmitter certainly is the best way of giving the news about freedom struggle to the people and reaching it to every nook and corner of the country. So we thought of organizing a secret radio station.
On this day in 1781, Haider Ali of Mysore clashed with the forces of the British East India Company at the Battle of Pollilur. The forces under Haider Ali endured many casualties from the British but eventually retreated to Kanchipuram. The Battle of Pollilur was fought as part of the Second Anglo-Mysore War between the English forces and the Kingdom of Mysore under Haider Ali and his son Tipu Sultan from 1780 to 1784.
The Second Anglo-Mysore War ended with the Treaty of Mangalore, with both the parties agreeing to return the captured territories and prisoners to each other. Mysorean rockets, the first iron-cased rockets, were effectively used against the forces of the British East India Company by the Mysore Army during this battle.
Yes, and we are also remembering Le Corbusier, who was a Swiss French architectural designer, painter, urban planner and writer, who was one of the pioneers of what is now regarded as modern architecture. Dedicated to providing better living conditions for the residents of crowded cities, Le Corbusier was influential in urban planning and was a founding member of the Congrès International d'Architecture Moderne, CIAM. Le Corbusier prepared the master plan for the city of Chandigarh in India and contributed specific designs for several buildings there, especially the government buildings.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस महान फिल्मकार को जिन्होंने अपनी सरल और संवेदनशील फिल्मों से हर दिल में खास जगह बनाई. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश मुखर्जी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है. शुरुआत में फिल्म संपादन और इसके साथ ही उन्होंने निर्देशन से अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने लगभग 42 फिल्मों का निर्देशन किया और उनकी फिल्में सामाजिक मूल्यों और मानवीय रिश्तों पर आधारित होती थी, जिनमें आनंद, चुपके चुपके, गोलमाल, सत्यकाम, मिली और नमक हराम जैसी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में बसती हैं. उनकी फिल्मों की खासियत ये रही कि वह आम आदमी की कहानी को बेहद सहज और मनोरंजक ढंग से पेश करते थे.
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए. जिंदगी कैसी है पहेली हाय.
Mukherjee was the Indian very famous film director, editor and writer, and is regarded as one of the greatest filmmakers of Indian cinema, renowned for his social films that reflected the changing middle-class ethos. Mukherjee carved a middle path between the extravagance of mainstream cinema and the stark realism of art cinema, and the Government of India honoured him with the Dada Saab Phalke Award in 1999 and the Padma Vibhushan in 2001. He received the NTR National Award in 2001 and has also won 8 Filmfare Awards.
अभिषेक, खास बात ये रही है कि ऋषिकेश मुखर्जी की जो फिल्में होती हैं उसमें जो संवाद होते थे वो भी दिलों को छू लेने वाले रहे हैं. आनंद फिल्म का मशहूर संवाद आज भी लोगों की जुबान पर है.
आप कहना क्या चाहते हैं?
यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मछाए, आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मछाए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मछाए, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं तो फिर डर किस बात का?
आई एम सॉरी आनंद साहब।
साहब? ए बाबू मछाए, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसे जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतर आए, कहो क्या ख्याल है?
Yes, and Mukesh Chand Mathur passed away on this day in 1976, better known mononymously as Mukesh. He was an Indian playback singer. He is considered to be one of the most popular and acclaimed playback singers of the Hindi film industry. And among the numerous nominations and awards he won, his song Kai Baar Yuhi Dekha Hai from the film Rajinikanda in 1973 won him the National Film Award for the Best Male Playback Singer. Let's listen to it.
कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है।
तो जाहिर सी बात है कि मुकेश की आवाज में एक सादगी और दर्द की मिठास थी जो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंचती थी। उन्हें सिंगिंग वॉइस ऑफ राज कपूर भी कहा गया क्योंकि राज कपूर के अधिकतर अमर गीतों को आवाज मुकेश जी ने ही दी थी।
आवारा हूं, आवारा हूं, या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, आवारा हूं, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, घर बार नहीं संसार नहीं।
तो मुकेश जी ने कई फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और 1994 में फिल्म कभी कभी के गीत के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा श्री मुकेश ने दोस्त दोस्त ना रहा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जीना यहां मरना यहां जैसे कई अमर गीत गाए, उन्हीं में से एक अमर गीत ये भी है।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
Yes, and Sir Donald George Bradman was born on this day in 1908. Nicknamed the Don, he was an Australian international cricketer, widely acknowledged as the greatest batsman of all time. His cricketing successes have been claimed by Shane Warne, among others, to make Bradman the greatest sportsperson in history. Bradman's career test batting average of 99.94 is considered by some to be the greatest achievement by any sportsman in any major sport. The story that the young Bradman practiced alone with a cricket stump and a golf ball is part of Australian folklore. His meteoric rise from bush cricket to the Australian Test team took just over 2 years, and before his 22nd birthday, he had set many records for top scoring, some of which still stand, and became Australia's sporting idol at the height of the Great Depression. This hero status grew and continued through the Second World War.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं भारत की उस खिलाड़ी की जिसने इतिहास रच दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीए भवानी देवी की। 27 अगस्त 1993 को चेन्नई तमिलनाडु में जन्मी भवानी देवी देश की पहली ऐसी महिला फेंसर हैं जिन्होंने ओलंपिक में जगह बनाई। स्कूल के दिनों में ही उन्हें तलवारबाजी से लगाव हुआ और उसी लगन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। 2010 में उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में टीम के लिए कांस्य पदक जीता। इसके बाद 2014 में इटली में टस्किनी कप का स्वर्ण और 2018 में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया।
So we are also remembering Sir Dorabji Tata, who was born on this day in 1859. He was an Indian industrialist, philanthropist of the British Raj and a key figure in the history and development of the Tata Group. So with that, it's time to wind up this edition of Parikrama. So from Karishma Rai and me, Abhishek Mukhopadhyay.
Namaskar.
Namaskar.